Exato. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والأصل إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. آج ہم انشاءاللہ ایک نیا موضوع شروع کریں گے اپنے حضرت پیر ذوالفقار احمد نقشبندی رحمتہ اللہ علیہ کے سلسلہ دروس امور خانداری میں حسن انتظام میں سے. اور جیسے کہ آپ نے فلائرز پر دیکھ ہی لیا ہوگا کلاس نوٹیفیکیشن کے اندر کہ یہ موضوع جو ہے وہ ہے وقت کا صحیح استعمال. یعنی انگریزی میں اس کو ٹرانسلیٹ سمپل طریقے سے ایسے کیا جائے گا کہ ٹائم مینجمنٹ. ٹھیک ہے، ٹائم مینجمنٹ، وقت کو کیسے مینج کیا جائے، صحیح استعمال کیا جائے. تو یہ موضوع انشاءاللہ آج ہم پڑھنا شروع کریں گے. امید ہے کہ آپ لوگوں کے پاس کتاب موجود ہوگی. اگر کتاب موجود نہیں ہے تو جو آپ لوگوں کو پی ڈی ایف فائل کا لنک بھیجا تھا نوٹیفیکیشن میں، تو اس لنک کو آپ نے پرنٹ کر لیا ہوگا، تو ایک کتابی شکل میں آپ کے سامنے ایک پرنٹ آؤٹ موجود ہوگا. اور اگر پرنٹ نہ بھی کر سکیں تو کم از کم سکرین کے اوپر جو ہے وہ اس کو فالو کر رہی ہوں گی، جو کہ سب سے کم درجہ ہے اور سب سے کم اس کے اندر فائدہ متوقع ہے. سب سے زیادہ فائدہ تو کتاب کے سامنے ہونے سے ہی ملے گا، اور اگر کتاب نہیں ہے تو چل کم از کم نوٹس ہوں. نوٹس کے اوپر بھی انسان لکھ سکتا ہے، اپنے ذاتی نوٹس بھی، حاشیے کی طریقے سے اپنے ذاتی نوٹس بھی لکھ سکتا ہے. سکرین کے اوپر آپ لکھ نہیں سکتی، اگر لکھ بھی لیں گی تو اس کو جو ہے وہ اتنا کنوینئنٹلی ایکسس نہیں کر سکیں گی. ٹھیک ہے، تو بہرحال جو بھی درجہ ہے جس کو بھی ملا تو وہ اس کو استعمال کرے. تو وقت کا صحیح استعمال، ٹائم مینجمنٹ شروع ہم انشاءاللہ کر لیں گے اس کلاس کے اندر. لیکن اس سے پہلے جو ہے وہ پیچھے کا جو ٹاپک تھا اس میں چند ایک باتیں اہم وہ رہ گئی تھیں، تو وہ ہم مکمل کر کے آگے بڑھیں گے. اگرچہ کہ ہم نے پڑھ تو لیا تھا پورا وہ کتاب میں سے جو حضرت کے الفاظ تھے وہ تو ہم نے پڑھ لیے تھے، لیکن کچھ ایکسپلینیشن جو ہے وہ وقت مکمل ہونے کی وجہ سے رہ گئی تھی. تو بالکل جو آخری ہیڈنگز تھی نا کھانے کا انتظام والے موضوع کے اندر، تو اس میں جو حضرت نے فرمایا تھا کہ کھانا بنانے پر سب کی عبادت کا ثواب، انہوں نے کہا کہ وہ کیسے ملے گی؟ ڈھونڈنے سے ملے گی؟ کیا خیال ہے آپ کا؟ تلاش کرنے سے ملے گی. ٹھیک ہے، تو اب آپ ہیں کدھر اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے نا کہ جی آپ کے ملک میں، آپ کے شہر میں کوئی ایسا بک سٹور ہے وہاں سے ملے گی. اور اگر کتاب نہیں بھی مل رہی ہے تو پی ڈی ایف جو ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کری ہے، تو گروپ کے اوپر آپ دیکھیں نا جو میسج آیا تھا کہ 8 بجے کلاس ہوگی، 8:45 پہ کلاس ہوگی، اسی والے میسج کے اندر پی ڈی ایف لنک تھا، تو اس کو آپ کلک کریں گی تو وہ کھل جائے گی کتاب. باقی آپ جس شہر میں، جس ملک میں رہتی ہیں تو وہاں سے کتاب بک سٹور میں مل جائے گی، اور اگر نہیں ملتی ہے تو پھر آن لائن آرڈر کرنے کا وغیرہ کا سلسلہ دیکھیں. بک کا نام کیا ہے؟ امور خانداری میں حسن انتظام، یہ ہے بک کا نام. ٹھیک ہے، واٹس ایپ گروپ پر ہے نا، تو اس کے اوپر آپ دیکھ لیجیے گا، اور فلائر کے اوپر بھی بک کا نام لکھا ہوتا ہے، انہوں نے بھی یہاں پہ لکھ دیا آپ کے لیے. جزاک اللہ. تو کھانا بنانے پر سب کی عبادت کا ثواب، तो हजरत ने इसमें बड़ी अच्छी अच्छी बातें करी थी, यानी इस बात को इनकरेज करने के लिए ना, इसको प्रमोट करने के लिए कि भाई आप घर में जो खाना बनाती हैं तो उसे खाकर आपके घर के जितने लोग भी नेकी करेंगे, नमाजें पढ़ेंगे, उनका सवाब आपको भी मिले। उस हदीस मुबारक से साबित होता है कि सहाबा कराम में जो सफर पे थे तो सहाबा कराम में से चंद ने खूब इबादतें करी, तिलावतें करी, और बाकी सहाबा ने जो है वो सिर्फ हंडिया चोला किया, सिर्फ खाना पकाया उन लोगों के लिए। तो नबी अलैहिस्सलाम फरमाया कि तुम लोगों को भी उतना ही सवाब मिलेगा जितना इबादतें करने वालों को सवाब मिला। ठीक है, तो इससे जो है ना वो हजरत क्या बात समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई ये कोई बेकार काम नहीं है, ये कोई थैंकलेस जॉब नहीं है। ठीक है, जैसे कि शयातीन ने इस वक्त दुनिया के अंदर इस नजरिए को फैला दिया है कि ये घर के अंदर खाना बनाना, इससे ज्यादा बेकार और फजूल काम कोई नहीं हो सकता। तो ये शयातीन का फैलाया हुआ नजरिया है, ये हकीकत नहीं है, ये झूठ है। ठीक है, तो भाई इसके जरिए से आप जो है वो सबको सपोर्ट कर रही होती हैं, क्योंकि बाकी जो लोग हैं वो खाना खाए बगैर काम नहीं कर सकते, चाहे वो इबादत का काम हो, चाहे वो दफ्तर का काम हो, चाहे वो मजदूरी का काम हो, चाहे वो दीन का काम हो, जिहाद का काम हो, जो भी काम हो, वो खाना खाए बगैर वो काम नहीं कर सकते हैं। तो आप उनको एनेबल कर रही होती हैं, आप उनको एम्पावर कर रही होती हैं, तो इससे ज्यादा अहम काम और कौन सा हो सकता है? तो इस चीज को जो है वो हम समझें। और इसमें जाहिर शैतान एक तो ब्लैंकेट स्टेटमेंट देते हैं ना, ब्लैंकेट स्टेटमेंट्स देता है कि बिल्कुल फजूल काम है, बिल्कुल बेकार काम है, जाया हो रही है। ठीक है, लेकिन शैतान इतना भी सिंपल नहीं है कि वो सिर्फ ब्लैंकेट स्टेटमेंट्स के ऊपर काम चलाए अपना। ठीक है, उसको भी पता है कि ये ब्लैंकेट स्टेटमेंट, यानी जिसको अम्ब्रेला स्टेटमेंट आप कह सकती हैं ना, कि भाई सब कुछ उसके अंदर कवर हो जाता है, इसको ब्लैंकेट स्टेटमेंट कहते हैं ना। जैसे आप ब्लैंकेट ओढ़ते हैं तो आप पूरे के पूरे उसके अंदर छुप जाते हैं, उसी तरीके से कोई ऐसा जुमला कह देना जिसमें सारी चीजें कवर हो जाए, ठीक है, इजमाली जुमला कह देना, तो हर जगह ऐसे काम नहीं चलता, हर जगह ब्लैंकेट स्टेटमेंट से काम नहीं चलता। तो ये शैतान जो है फिर उन जगहों पर जहां पर ब्लैंकेट स्टेटमेंट से काम नहीं चलता ना, वहां पर फिर वो धोखेबाजी के तरीके इस्तेमाल करता है। ठीक है, वो धोखों के तरीके इस्तेमाल करता है कि जिसको के आम बंदा समझ नहीं पाता। ठीक है, तो वो धोखे का क्या होता है कि वो ना दूसरी चीजों को ज्यादा अहम बना करके पेश करता है और उसके अंदर फिर इंसान को लगाता है। ठीक है, उसके अंदर उसको लगाता है ताकि फिर उसके लिए जो है ना वो ये जिम्मेदारी की अदायगी का वक्त ही बाकी नहीं बचे, वक्त ही बाकी नहीं बचे, तो फिर वो करेगी कैसे? ठीक है, तो उसके लिए फिर धोखे इस्तेमाल करता है, हत्ता कि दीन को भी धोखे के लिए इस्तेमाल करता है, दीन को भी धोखे के लिए इस्तेमाल करता है। ठीक है, जैसे मिसाल के तौर पर ये जैसे इबादत वाली बात थी, तो ये इबादतें करना तो दीन का काम है ना। ठीक है, तो वो कहेगा कि नहीं देखो इबादत करना ज्यादा अहम काम है, तो तुम इबादत में लगी रहो ना, तुम्हें क्या जरूरत है खाने बना करके दूसरों को की खिदमत करने की। तो ये धोखा देता है, वो इबादत को यूज कर रहा है धोखा देने के लिए। तो हदीस मुबारक से ये बात क्लियर हो गई कि नहीं, अगर तुम्हारी जिम्मेदारी खाना बनाने की है तो तुम्हें इबादत का सवाब मिलेगा। ठीक है ना, अब व्हाट आर यू लुकिंग फॉर? आर यू लुकिंग फॉर सवाब जो कि अल्लाह की रजा से मिलता है, या यू आर लुकिंग फॉर प्लीजिंग योर सेल्फ, प्लीजिंग योर नफ्स, कि मुझे जिस चीज से खुशी होती है बस मुझे वो करनी है? अगर आप अपनी खुशी के लिए जिंदगी गुजारना चाहती हैं तो फिर परवरदिगार की खुशी तो नहीं मिलेगी ना। परवरदिगार की खुशी जो है वो तो परवरदिगार की खुशी के काम करने से मिलेगी ना, अपनी खुशी का काम करने से अपनी खुशी तो मिलेगी, परवरदिगार की खुशी नहीं मिलेगी। ठीक है, तो परवरदिगार की खुशी तो नबी अलैहिस्सलाम के वास्ते से हमें पता चलती है ना, अपने तरीके से, तो नहीं कि मैं इमेजिन करना शुरू कर दूं कि क्या तरीका अल्लाह को खुश करने का है, तो उस वजह से मुझे पता चल जाएगा कि अल्लाह को खुश करने का क्या तरीका है। अपने तौर पे सोच करके कोई तरीका इजाद कर लो। नहीं, अगर अपने तौर पे सोच के तरीका इजाद करना था अल्लाह को खुश करने का, तो फिर नबी को भेजने की जरूरत ही नहीं थी। हर बंदे के पास दिमाग है, हर बंदे के पास अकल है, वो अपने तौर पर अल्लाह को राजी करने का तरीका सोच लेता। लेकिन ऐसा मुमकिन ही नहीं है ना, जब भी तो नबी भेजे गए, जब भी तो कुरान भेजा गया। ठीक है, तो बहरहाल तो शैतान जो है वो धोखा देता है कि नहीं तुम इबादत में लगो, तुम्हें क्या जरूरत है खाना बनाने की। उस तरीके से एक और धोखा जो आजकल बहुत ज्यादा लग गया है, बहुत लोगों को लग गया है, वो क्या है कि आलिमा बनो, आलिमा। ठीक है, आलिमा बनो जी। अच्छा, बहुत सारों को हिफ्ज करने का भी शौक लग गया है। अब अच्छी खासी 3-4 बच्चों की माँ है, घर के अंदर जिम्मेदारियां हैं, और कुरान हिफ्ज करने का शौक लगा हुआ है। ये कुरान हिफ्ज करना है मुझे। भैया आप छोटी थी, छोटे बच्चों को, बच्चियों को तो हम भी कुरान हिफ्ज करवा रहे हैं, हमारी भी बच्चियां माशाल्लाह हिफ्ज कर रही हैं, कर चुकी हैं। लेकिन जब आपके ऊपर जिम्मेदारियां आ गई हैं, ठीक है, तो उस वक्त जो है वो आप अगर कुरान मजीद हिफ्ज करेंगे, तो कुरान मजीद हिफ्ज करना आसान काम है? किया है कभी खुद या कभी किसी को करवाया है तो पता चलेगा कि कुरान मजीद हिफ्ज करना कितना मुश्किल काम होता है। ठीक है, या मकसद ये है कि उसके लिए वक्त लगाना पड़ता है। मुश्किल से मतलब ये नहीं है कि नहीं, हो नहीं सकता, कर सकता है बंदा, लेकिन वक्त लगाना होता है ना उसके लिए। अब कुरान मजीद हिफ्ज करेंगी तो फिर खाना कौन बनाएगा, घर का कामकाज कौन करेगा, बच्चों की तरबियत कौन करेगा, बच्चों को सही गलत की तमीज कौन सिखाएगा? तो लगी हुई है कुरान हिफ्ज करने के लिए। भाई हर चीज का एक मौका, एक वक्त होता है, हर चीज का एक कॉन्टेक्स्ट होता है। आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट शैतान का यही काम है, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट काम करवाए। ठीक है, तो उसी तरीके से आलिमा बनना, आलिमा बनने का मतलब यह है कि आपको बाकायदा इंस्टीट्यूशनलाइज तरीके से इल्म हासिल करना पड़ेगा। और आलिमा कोर्स में बहुत ज्यादा तफसील है। पहले तो 4 साल का आलिमा कोर्स होता था, अब तो वो 6 साल का आलिमा कोर्स हो गया है। और वो सब्जेक्ट जो पहले नहीं भी होते थे ना, वो भी उसके अंदर ऐड कर दिए गए हैं। भाई उसका एक कॉन्टेक्स्ट है, अगर आपके ऊपर वो कॉन्टेक्स्ट अप्लाई नहीं होता, तो आप अगर आलिमा बनने की कोशिश करेंगी तो फिर आपकी जिम्मेदारियां कौन अदा करेगा? फिर वही होता है कि जी आलिमा बनो और पढ़ाई करो और फतवे मुफ्तिया बनो और आगे से फतवे दो और घर की जिम्मेदारी नहीं। भाई आपको अगर अल्लाह ताला ने ऐसा बनाया है कि आपके पास जिम्मेदारियां नहीं है, फिर आप करें ना। लेकिन अगर आपके पास जिम्मेदारियां हैं तो फिर आप अल्लाह ताला को आलिमा बन के राजी नहीं कर सकती हैं, आलिमा बन के आप अल्लाह को राजी नहीं कर सकती हैं। ये बात आप कंफर्म करवा लें किसी से, अगर यकीन नहीं आ रहा इस बात पे। ठीक है, तो ये फिर इस तरह की जो आलमा बनती है ना, तो उसके लिए किसी ने बड़ा अच्छा मजमून लिखा और उसका नाम उसने लिखा कि आलिमा जालिमा लेजीमा। आलिमा जालिमा यानी जुल्म करने वाली और लेजीमा, उसने एक अपना नाम ईजाद कर ली कि भी लेजी होती है ये औरत, जो इस तरीके से ना अपनी ख्वाहिश पूरा करने के लिए आलिमा बनती है ना, वो फिर लेजी माँ बनती है, असल में आलिमा नहीं बनती। ठीक है, तो ये शैतान के काम होते हैं कि वो आलिमा के रास्ते से फिर जिम्मेदारियों से गाफिल करता है, या हाफिजा बनने के शौक में जिम्मेदारियों से गाफिल करता है। ऐसी औरत को अल्लाह की रजा नसीब नहीं होती, ये अपनी ख्वाहिश के लिए हाफिजा बन रही है, अपनी ख्वाहिश के लिए आलिमा बन रही है। ठीक है, तो भाई ये जो काम है करने के, इनको अपने कॉन्टेक्स्ट में सीखना होता है, समझना होता है। ठीक है, जिसको आपकी हकीकत का पता हो ना, आपकी तफसील का पता हो, वो आपको ही आपका कॉन्टेक्स्ट में आपको सही मशवरा दे सकते हैं कि भाई आपको करना चाहिए कि आपको नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो अब यहां पर जो है ना, वो हजरत क्या फरमा रहे हैं कि खाना एक हुनर है, हर औरत को अच्छा खाना बनाना आना चाहिए, हदीस पाक में है कि अल्लाह ताला हुनर वाले बंदे को बेहुनर बंदे की निस्बत ज्यादा पसंद फरमाते हैं। अगर हुनर वाला मोमिन अल्लाह को ज्यादा पसंद है तो जिस औरत को बेहतर कुकिंग आती होगी वो भी अल्लाह को ज्यादा पसंद होगी बनिस्बत उस औरत के जिसको कुकिंग आती ही नहीं। इसलिए कि ये एक फन है, ये एक हुनर है। जिस औरत को आता है वो मेहमान नवाजी अच्छे तरीके से कर सकती है। चुनाचे खाना शौक से बनाए और जिक्र के साथ बनाए। ठीक है, तो जिस औरत का ये कॉन्टेक्स्ट है कि उसको खाना बनाने की पहले तो सीखना पड़ेगा ना। अगर सीखा नहीं होगा शादी से पहले तो फिर शादी के बाद जो है वो खाना कैसे बनाएगी। वही होता है जो हमने अन यानी हम गिन नहीं सकते ऐसे केसेस को कि वो आलिमा बनकर आ गई या पता नहीं और कुछ बनकर करके करके आ गई, शादी हो गई, अब शादी के बाद जो है ना वो अब सीख रही हैं। अगर मजबूरी पड़ रही है तो सीख रही है, वरना वो भी नहीं सीखती। शादी शादी के बाद भी नहीं सीखती। हर वक्त जो है वो बाहर से ऑर्डर हो रहा है, हर वक्त बाहर से ऑर्डर हो रहा है, या उल्टा सीधा जो है वो जैसा तैसा करके, या कुछ के तो शौहर ही बना रहा होता है खाना। कुछ घरों में तो सिर्फ शौहर ही खाना बना रहा होता है। ऐसे भी घर मौजूद है, वो दफ्तर का भी काम करेगा, वो बाहर के भी दूसरे और बिल्स वगैरह का जो भी इस किस्म के काम वो भी करेगा, और घर में खाना भी शौहर ही बनाएगा, क्योंकि बेगम साहिबा ने नहीं बनाना, उन्होंने सीखा ही नहीं। हमने तो एक दफा ना बच्चों की क्लास थी, आप लोगों में पता नहीं किसी ने सुनी कि नहीं सुनी, काफी कुछ महीनों पहले की बात है। हमने तो बच्चों की क्लास में कहा कि बच्चों, लड़के सामने बैठे हुए थे, मैंने कहा लड़कों हम मिलकर के ना एक तहरीक चलाते हैं, मेंस लिबरेशन की तहरीक। ठीक है ना, एक है ना आजकल ना वेमेन्स लिबरेशन की तहरीक, उल्टी सीधी लोग बोलते रहते हैं। हम मेंस लिबरेशन की तहरीक चलाते हैं कि हम ये कहते हैं हम सारे के सारे हड़ताल कर देते हैं लड़के। ठीक है ना, अब हम हमारी उम्र तो ज्यादा हो गई है लेकिन अभी भी अपने आप को अभी तो मैं जवान हूं। ठीक है, तो लड़कों में शामिल करके हमने कहा कि जी हम सब एक तहरीक चलाते हैं कि हमने कोई पढ़ाई वढ़ाई नहीं करनी, हम पढ़ाई से ना हड़ताल कर देंगे, हम पढ़ाई नहीं करेंगे। ठीक है, तो भाई आगे से कहेंगे अच्छा तुम पढ़ाई नहीं करोगे तो हमें कहा जाएगा कि फिर तुम घर की जिम्मेदारी कैसे उठाओगे, जब तुम्हारी शादी होगी तो तुम घर की जिम्मेदारी कैसे उठाओगे, तुम कमाओगे कैसे। तो हम उसके ऊपर ये जवाब देंगे कि भाई जब शादी होगी तो उसके बाद देखा जाएगा, जब शादी होगी तो फिर हम कमाना शुरू कर लेंगे। तो फिर उसके ऊपर हमें ये कहा जाएगा कि तुम कैसे कमाओगे, जब तुमने कमाने के लिए तालीम ही हासिल नहीं करी होगी तो तुम कमाओगे कैसे। तो उसके ऊपर हम ये जवाब देंगे कि हम उसी वक्त तालीम हासिल करना भी शुरू कर देंगे। जब शादी हो जाएगी, जब अपने ऊपर जिम्मेदारी पड़ेगी, तब हम पढ़ाई करना शुरू कर देंगे। ठीक है, बात समझ में आ रही है। फिर हम पढ़ाई करना शुरू करेंगे और फिर उसके बाद जब पढ़ाई हमारी मुकम्मल हो जाएगी फिर उसके बाद हम जॉब करेंगे, फिर हम जो है वो बीवी बच्चों के लिए जो है वो कमाई कर लेंगे। क्यों भाई? इसलिए कि औरतों के साथ भी तो यही हो रहा है, राइट? औरतों के साथ भी तो आप यही कर रहे हैं। औरतों को तो आपने माशाल्लाह बड़ी छूट दी हुई है कि जी पहले तो आप जाएं स्कूल जाएं कॉलेज जाएं और जो है वो आप फलानी में मास्टर्स करें, फलानी में बैचलर्स करें, आप कंप्यूटर साइंटिस्ट बने, आप जो है वो मेडिकल डॉक्टर बने, आप इंजीनियर बने, आप जो है वो साइंटिस्ट बने और सब कुछ बने। ठीक है ना, ये सारा जो है ना बच्ची को शादी के वक्त तक ये सारे उलूम पढ़ाए जाते हैं। अभी जब शादी होती है तो अब शादी के बाद जब जिम्मेदारी पड़ी है घर की तो अब कहते हैं अब सीखो, अब इल्म हासिल करो, अब तालीम हासिल करो, गृहस्थी का, हाउस होल्ड मैनेजमेंट का, रिलेशनशिप मैनेजमेंट का, अब तुम इल्म हासिल करो। फिर जब इल्म हासिल कर लेना फिर उसके बाद तुम हाउस होल्ड और रिलेशनशिप मैनेजमेंट भी कर लेना। तो भाई जब आप औरतों को, जब आप लड़कियों को माशाल्लाह बगैर सिखाए जो है ना वो जिम्मेदारियों को बोझ उनके ऊपर डाल रहे हैं, तो फिर हम लड़कों ने क्या कसूर किया है? हम लड़कों ने क्या कसूर किया? हमें भी खेलने कूदने दो भाई, जो हम चाहते हैं जो हमें अच्छा लगता है वो हमें करने दो। शादी के बाद देखी जाएगी, फिर तालीम हासिल करना शुरू कर लेंगे। एम आई मेकिंग एनी सेंस? जी समझ में आ रहा है किसी को? ठीक है ना, तो जो करने के काम है, जिसने करना है कुछ कुछ सोचना है, अल्हम्दुलिल्लाह कुछ कुछ तो आ रहा है आपको। वैसे बड़ा मुश्किल है इस बात को समझना सब, बल्कि बहुत ज्यादा मुश्किल काम है इस बात को समझना। आपको अल्हम्दुलिल्लाह कुछ कुछ समझ में आ रहा है, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो ये जो है ना कि भाई ये डॉक्टर बना रहे हैं, इंजीनियर बना रहे हैं, और खाने को जो है वो सबसे ज्यादा बुरी किस्म की चीज बना करके पेश कर रहे हैं ना, तो ये भाई ये शेष शयातीन है, ठीक है ना, शयातीन मिनल इनसे वल जिन, ठीक है, इनकी बात मत सुना करें, वरना आपका अपना नुकसान होगा, किसी दूसरे का नुकसान नहीं होगा, आपका अपना नुकसान होगा। ठीक है, हजरत जी जो है ना वो एक एक और कंफ्यूजन को भी हम जरा एड्रेस कर लें इस वक्त, एक और कंफ्यूजन को। क्या आपने सुना होगा आजकल तो बहुत मशहूर हुआ है ना आलमा कोर्स, ठीक है, ऑनलाइन आलमा कोर्स, और जी वो ई महद के अंदर कोर्स होता है, और जब उसके नतीजों का ऐलान होता है तो उस वक्त खास तौर पे ऐलान रहता है कि फलानी तालिबा जो हैं ये असल में मेडिकल डॉक्टर हैं, ये मेडिकल डॉक्टर होने के बावजूद उन्होंने आलमा कोर्स किया, और इतने साल आलमा कोर्स करके जो है वो उसमें फारिग तहसील हुई। फलानी जो है वो इंजीनियर हैं, खवातीन की जो है ना वो रिजल्ट्स अनाउंस हो रहे होते हैं कि खवातीन को कब बड़ा इस तरह से ना कि जी ये इंजीनियर हैं, फिर भी उन्होंने आलमा कोर्स किया, और फिर इतने साल में करने के बाद अब ये फारिग तहसील हो गई हैं, दौरे हदीस भी उन्होंने मुकम्मल कर लिया है। तो अब ये सुन करके ना लोगों को ऐसा लगता है, कुछ लोग समझते हैं क्योंकि उन्होंने सोबत इन तो हासिल किया नहीं होता, बस सुन रहे होते हैं और अपनी तौर पर उसको समझ रहे होते हैं, तो वो ये समझना शुरू करते हैं, कर देते हैं कि जी इसका मतलब ये है कि हजरत पीर जुल्फिकार अहमद नक्शबंदी रहमतुल्ला अलैह वो प्रोमोट कर रहे हैं कि जी औरत को डॉक्टर बनना चाहिए, औरत को तो इंजीनियर बनना चाहिए, औरत को तो साइंसदान बनना चाहिए। तो उनको तारीफन ये बात कही जा रही है कि देखो ये डॉक्टर हैं, देखो ये इंजीनियर हैं, देखो ये साइंटिस्ट हैं, और फिर उसके साथ उन्होंने आलमा कोर्स भी कर लिया। भाई ये ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। डॉक्टर बनने को प्रमोट नहीं किया जा रहा होता, बल्कि जो बन चुकी है, ठीक है, जो बन चुकी है, क्योंकि जब वो बनना शुरू कर रही थी उस वक्त उसके पास इल्म नहीं था, उस वक्त उसके माँ बाप के पास ये समझ नहीं थी कि मेरी बेटी के लिए कौन सा इल्म ज्यादा अहम है, बल्कि कौन सा इल्म फायदा मंद है मेरी बेटी के लिए, उस वक्त उनके पास ये इल्म नहीं था। तो इस वजह से वो बन गई, अब जब वो बन गई हैं और वो इस किस्म की जिंदगी में आ गई हैं कि जिसके अंदर के वो घर में अब वो नहीं टिक सकती, घर में नहीं टिक सकती अब वो, ठीक है, अब उनको बाहर ड्यूटी करनी है, नाइट ड्यूटी करनी है, और उन्होंने जो है वो मर्दों को भी ट्रीट करना है, और मर्दों से डील भी करना है, और ट्रीट भी करना है, राइट। डेंटिस्ट खवातीन जो होती है ना, तो उनके जो मर्द पेशेंट्स होते हैं ना, उनके मुंह में घुस के उनको काम करना होता है। आपका क्या ख्याल है, डेंटिस्ट का क्या एरिया होता है, मुंह? तो जब वो मेल साहब जो है वो आपके चेयर पे बैठे हुए होंगे, लेटे हुए होंगे, तो आपको उनके मुंह में घुस के काम करना होगा ना, जो डेंटिस्ट साहिबा होती हैं, ठीक है। और डेंटिस्ट तो सबसे ज्यादा इज्जत वाली जगह पे घुस के काम कर रही होती है, राइट, समझ में आ रही है बात ना। मुंह जो होता है ना वो इंसान का सबसे ज्यादा इज्जत वाला मुकाम होता है, तो वो मर्दों के मुंह में घुस के काम कर रही होती है, और जो बाकी डॉक्टर होती है वो तो मुंह में काम नहीं कर रही होती, वो तो बाकी बदन के ऊपर काम कर रही होती है ना। क्या ख्याल है, गलत कह रहा हूं? जो दूसरी डॉक्टर होती है नॉन डेंटिस्ट, उसको तो पूरे जिस्म पे काम करना होता है, और इसके लिए जो 5 साल या 6 साल की जो मेडिकल एमबीबीएस की तालीम होती है, तो उसमें तो फिर इन सब की जो है वो प्रैक्टिस करनी होती है, ठीक है, तो अब करती हैं भाई, सब करती हैं फिर उसके बाद, और फिर उसके बाद उसको क्लिनिक के अंदर, हॉस्पिटल के अंदर अप्लाई भी करना होता है, ठीक। क्या लिख दिया भैया आपने, उमूर खानदारी की तालीम आमतौर पर लड़कियों के इसलिए नहीं दी जाती, क्योंकि बचपन से बच्ची अपनी वालदा और बड़ी घर संभालते हुए देखती है, वालदा को मुख्तलिफ घरेलू मसाइल होते हुए मुशाहदा करती हुए सब देखते हुए बड़ी होती है आराम से जो घर का माहौल रहा है इसी तरह ससुराल में जाकर करेगी। वल्लाहु आलम। जी वाकई अल्लाह ताला ज्यादा इल्म रखता है आपसे। ठीक है वल्लाहु आलम। जब वो स्कूल जाती है ना, फिर स्कूल की पढ़ाई कर रही होती है ना अच्छे ग्रेड्स लाने के लिए, तो वो उसके पास वक्त नहीं होता कि वो अपने घर की बड़ी औरतों को मसाइल हल करते हुए देख सके। उसके पास वक्त नहीं होता, उसको तो स्कूल जाना होता है, उसको तो कॉलेज जाना होता है, फिर घर आकर के उसको उसके असाइनमेंट्स करने होते हैं, उसको पढ़ाई करनी होती है, तो वो उसके पास कहाँ से वक्त होगा कि वो अपने वालदा और दीगर खवातीन को जो है वो घरेलू मसाइल हल करते हुए देखे। ये बात तो बड़ी तफसील के साथ साहबियात क्लास के इंट्रोडक्शन के अंदर हो चुकी है, अगर आपने उसको सुना हो। ठीक है, तो वो फिर ये सब चीजें नहीं सीख रही होती ना, फिर तो वो बैटल ग्राउंड के अंदर सीख रही होती है। बैटल ग्राउंड समझते हैं ना, मैदान जंग, ससुराल, या शौहर के साथ जब वो असल रियल लाइफ में आ चुकी होती है अब वो सीख रही होती है। इसको कहते हैं बैटल ग्राउंड के अंदर ट्रेनिंग हो रही होती है उसकी। अब वो बैटल ग्राउंड में जिसने पहले ट्रेनिंग नहीं करी होगी वो उतर जाएगा जब मैदान जंग के अंदर, तो फिर उसका क्या हशर, क्या हशर होगा उसका। इसको तो वहां पे करना ही नहीं आता कुछ, तो इसी वजह से जो है वो एक एक महीने के अंदर जो है वो तलाकें भी हो रही होती हैं। कुछ तलाकें तो रुख्सती से पहले हो जाती हैं, कुछ तलाकें जो है रुख्सती के 1 महीने के बाद हो जाती हैं ज्यादा। ठीक है, और जिनके यहाँ तलाक नहीं होती, अच्छा तलाक तो हो भी जाती है, तलाक तो हो भी जाती है लेकिन छुपा रहे होते हैं सबसे। कुछ जगह ऐसी भी होती है जहां पे छुपा रहे होते हैं हालांकि तलाक हो चुकी होती है। ठीक है, और कुछ जगहों पे जो है वो तलाक बिल्कुल नहीं हुई होती है, तो लड़ाई झगड़े मारपीट और ये सारी चीज तमाशे हो रहे होते हैं। क्योंकि ना लड़के को सिखाया कि रिलेशनशिप मैनेजमेंट क्या चीज होती है, राइट, वाइफ मैनेजमेंट क्या चीज होती है, ना लड़के को किसी ने सिखाया ना लड़की को किसी ने सिखाया। तो बगैर सीखे हुए आपका क्या ख्याल है? हैं, किसी इंजीनियर को जो है वो आप भेज देना ना प्लांट के अंदर भेज दें किसी इंजीनियर को और उसको कुछ ना सिखाएं, तो वो फैक्ट्री में जाके क्या करेगा फिर उसके बाद? मशीनों को खराब ही करेगा ना, और क्या करेगा वो, क्योंकि आपने उसको तालीम तो दी नहीं है। किसी आप किसी बंदे को आप डॉक्टर का लेबल लगा दें, डॉक्टर का सूट पहना दें, लेकिन डॉक्टरी की तालीम और तरबियत ना दें और उसको भेज दें अस्पताल के अंदर, जाओ जी जाकर तुम लोगों का इलाज करो, अब वो क्या करेगा? उसने बंदे मारने हैं फिर उसके बाद, राइट, उसने बंदे मारने हैं ना फिर जा करके, क्योंकि आपने डॉक्टर का सूट तो पहना दिया है, हाथ में जो है वो स्टेथोस्कोप भी पकड़ा दिया लेकिन उसको चलाना नहीं आता स्टेथोस्कोप, तो फिर उसने क्या करना है? यही मामला जो है वो दुल्हा दुल्हा साहब और दुल्हन साहिबा के साथ भी यही मामला करते हैं, राइट, दुल्हन बना देते हैं, दुल्हा बना देते हैं, लेकिन ना उसको जो है वो बीवी बनना सिखाया, ना उसको जो है वो शोहर बनना सिखाया। ठीक है, तो फिर क्या करना होता है? फिर यही करना होता है, फिर उसके बाद घरों में आग लगानी होती है, ठीक है, और दूसरों का दिमाग खराब करना होता है अपने जो लड़ाई झगड़ों की वजह से। कल हमारी बेगम साहिबा जो है वो 2.5 घंटे तक इसी तरह की एक खातून से बात करती रही जिनको किसी ने कुछ ना सिखाया था और ना उन्होंने खुद सीख करके दिया, हालांकि उनको भी अल्लाह ताला ने मौके दिए थे भाई खुद सीख लेती, अगर तुम्हें किसी किसी ने ना सिखाया तो तुम खुद तो सीखो ना कम अज कम, इतनी बड़ी हो गई हो खुद क्यों नहीं सीखती, लेकिन नहीं, नहीं सीखना। अब 2.5 घंटे जो है वो किसी का सर खा रहे होते हैं फिर इस तरीके से फोन के ऊपर। क्या ख्याल है आपका? बोले कि नहीं जी आप गलत कह रहे हैं ऐसा नहीं होता, कोई बोले ना ये बात, नहीं आप गलत कह रहे हैं ऐसा नहीं होता, वेरी कॉमन दीज डेज। व्हाट इज वेरी कॉमन दीज डेज? बैटल ग्राउंड लर्निंग और बिल्कुल इस तरफ तवज्जो ही कोई नहीं। ठीक है, तो हजरत जी ऐसे नहीं कर रहे होते। अभी इसके ऊपर आगे से एतराज करते हैं कि जी जो मौलवी लोग जो हैं वो औरतों के डॉक्टर बनने के खिलाफ हैं, तो उनको चाहिए कि अपनी बीवी के लिए, अपनी बेटी के लिए फीमेल डॉक्टर्स की डिमांड ना करें। राइट, फीमेल डॉक्टर्स की डिमांड ना करें क्योंकि आप तो डॉक्टर बनने के खिलाफ हैं औरतों के, उसका हम ये जवाब देते हैं कि पहली बात तो ये है कि हम सिर्फ उनको बोल रहे हैं ना जो कि हमें सुन रहे हैं, पूरी दुनिया तो हमें नहीं सुन रही, पूरी दुनिया तो हमें नहीं सुन रही, ठीक है, तो हम तो उनको ये नसीहत कर रहे हैं जो कि हमें सुन रहे हैं, अब बाकी उनकी भी मर्जी है कि वो हमारी बात माने या ना माने, हम किसी को फोर्स तो नहीं कर सकते। दुनिया में तो लाखों करोड़ों ऐसी औरतें हैं जो कि डॉक्टर बन रही हैं, मेजोरिटी तो हमेशा उन्हीं लोगों की रहेगी। अल्लाह ताला ने नबी अलैहिस्सलाम क्या फरमाया था, व इन तुते अक्सर मन फिल अर्ज युगल्लू का अन सबीलिल्लाह, अगर आपने जमीन में मेजोरिटी लोगों की इत्तबा करी तो वो आपको गुमराह कर देंगे। तो इसमें हमने क्या बात करी थी सूरह नाम की आयत के अंदर कि मेजोरिटी तो हमेशा ही ना मानने वालों की रहेगी, तो भाई वो है ना डॉक्टर बनने वाली औरतें, वो बन रही हैं डॉक्टर, तो हमने सबका ठेका तो नहीं उठा उठा रखा ना, हमने पूरी दुनिया का ठेका तो नहीं उठा रखा, हमने किसका ठेका उठा रखा है, जिसको अल्लाह ने हमारे अहल में शामिल किया है, कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, अपने आप को तुम नार से बचाओ और अपने अहल को नार से बचाओ। अहल में कौन होता है, जो आपकी बात सुनता है वो आपके अहल में होता है। हजरत नूह अलैहिस्सलाम का बेटा उनके अहल में नहीं था, सगा बेटा था, सगा बेटा था नूह अलैहिस्सलाम का, लेकिन अल्लाह ताला ने फरमाया ये तुम्हारे तुम्हारे खानदान में से नहीं है, उसने नूह अलैहिस्सलाम की बात नहीं मानी, तो अल्लाह ताला का वादा था कि मैं आपको और आपके खानदान वालों को बचा लूंगा इस तूफान से, लेकिन उसने नूह अलैहिस्सलाम की बात नहीं मानी, वो डूब गया। तो नूह अलैहिस्सलाम ने बड़े तमीज से अल्लाह ताला से दुआ करी, अल्लाह ये तो मेरा अपना बेटा था, आपका वादा सच्चा है, अल्लाह समझना ये तुम्हारे अहल में से नहीं है। तो अहल की डेफिनेशन क्या हुई, मानने वाले सुनने वाले, ठीक है, तो बाकी दुनिया को तो ठेका नहीं उठा रखा, अल्लाह ताला ने जो कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा इसका जो है वो ठेका दिया हुआ है हमें, ठीक है, कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसूलुन अन रईयतिही, तो भाई हम इनकी बात करेंगे ना। और जहां तक उसूल की बात है कि भाई औरत को डॉक्टर नहीं बनना चाहिए, उसका जवाब हम ये देते हैं कि जो इस्लामी मुआशरा है, इस्लाम का निजाम है, अल्लाह का जो एक ही दीन है ना, और दीन तो नहीं है अल्लाह ताला के, अल्लाह ताला ने तो एक ही दीन दुनिया में नाजिल किया जो कि दीन इस्लाम है, दीन इस्लाम के अंदर इलाज मुआलजे का निजाम ये मर्दों के हाथ पे रखा है लगा, चाहे वो रूहानी इलाज हो चाहे जिस्मानी इलाज हो, चाहे रूहानी अंबिया अलैहिस्सलाम, एक औरत नहीं नबी, एक औरत को नबी नहीं बनाया, हत्ता कि अंबिया का सिलसिला जब बंद हो गया दुनिया में तो जो मशाइख का सिलसिला होता है, मशाइख का, उलमा की बात नहीं कर रहा, वो फार्मासिस्ट के दर्जे में आते हैं, उलमाए करा, मशाइख डॉक्टर्स के दर्जे में आते हैं मशाइख, ठीक है, जो कि इस्लाह का काम करते हैं, रोक टोक का काम करते हैं, वो मशायख होते हैं, कोई मशायख में एक औरत नहीं, कादरिया नक्शबंदिया सुहरवर्दिया शाजलिया, औरत मशायख में नहीं होती, मशायख की मदद करने वालों में औरत होगी, डॉक्टर की मदद करने वालों में औरत होगी, अंबिया की मदद करने वालों में औरत होंगी, लेकिन ना नबी औरत ना मशायख में से औरत, ठीक है, और ना ही डॉक्टर्स में से औरत, मेल डॉक्टर्स इलाज करते थे औरतों का, मेल डॉक्टर्स औरतों का इलाज करते थे, लेकिन इस्लामी निजाम में वो पर्दे का लिहाज करते हुए इलाज करते थे, पर्दे का लिहाज करते हुए, जिस जगह को देखना मजबूरन जरूरत है सिर्फ वो देखते थे, चाहे कोई भी जगह हो, चाहे गायनोकोलॉजिस्ट वाला काम हो, एक तो दाइया होती थी, ठीक है, दाइया तो औरत ही होती थी, लेकिन इवन रेस्ट ऑफ द बॉडी जो भी जगह हो सिर्फ उतनी जगह एक्सपोज करके मेल डॉक्टर देखेगा जितने की जरूरत है, जितने की जरूरत है, और ये जायज है हमारे दीन के अंदर और ये जरूरत है, बाकी चीज को कवर किया जाएगा, लेकिन हमारी बदबख्तियों की वजह हमारी कमबख्तियों की वजह से, हमारे गुनाहों की वजह से, हमारी बेईमानी की वजह से अल्लाह ताला ने इस निजाम को मुसलमानों से छीन करके काफिरों के हवाले कर दिया। राइट, ये सजा है ना अल्लाह ताला, अब कुफार के हवाले कर दिया। अब कुफार के पास जिस तरह आपके पॉलिटिकल सिस्टम्स हैं, आपके मिलिट्री के सिस्टम्स हैं, आपके तालीमी निजाम है कुफार के पास, उसी तरीके से आपका मेडिकल सिस्टम भी कुफार के पास है। राइट, आपका हेल्थ केयर सिस्टम भी कुफार का पूरा। तो अब जब काफिर के हाथ में वो सारे के सारे निजाम होंगे, तो फिर काफिर ने कोई थोड़ी पर्दे का लिहाज करना है, काफिर ने कोई थोड़ी हया और पाक दामनी का निजाम का लिहाज करना है। वो तो काफिर है भाई, जहन्नुमी है भाई, उसने को थोड़ी आपके पर्दा का ख्याल करना है। तो अब जब से ये काफिरों के हाथ में निजाम आया है, हर चीज उनके तरीके पे हो रही है। तो अब औरत का वो कोई थोड़ी एक हिस्सा को थोड़ी देखते हैं, अब तो वो पूरा बदन देखते हैं, हत्ता कि जो गाउन पहनाया जाता है उसके अंदर भी जो है वो बदन जो है एक्सपोज हो रहा होता है। तो ये निजाम काफिरों के हाथ में है। तो भाई अब जो है इस काफिर के निजाम के अंदर एक बागैरत, बेगैरत नहीं बल्कि बागैरत मुसलमान मर्द जो है वो अपनी बीवी के लिए कोशिश करता है कि जो काफिर औरतें हैं या मुसलमान औरतें भी हैं जो डॉक्टर बन चुकी हैं, तो भाई वो कोशिश ये करता है कि उनमें से किसी से जो है वो अपनी बीवी का इलाज करवाए, अपनी बहन का इलाज करवाए, अपनी माँ का इलाज करवाए, अपनी बेटी का इलाज करवाए। जितना कोशिश कर सकता है उतना तो कोशिश करता है ना, लेकिन होता क्या है आप लोगों को पता है अच्छी तरीके से। बात कोशिश करता है, कभी कामयाब भी हो जाता है, कभी नाकाम भी हो जाता है इसके अंदर, और अल्टीमेटली फिर वही काफिरों के हाथ में सारा का सारा निजाम होता है, बहुत जगहों पे बिलाखिर नाकाम हो जाता है। लेकिन भाई हमारे जो जिम्मेदारी है वो तो कोशिश करना है ना, हम कोशिश करते हैं। अब तुम्हें तकलीफ ये कि जी हम कोशिश भी ना करें कि जी आप जो है वो अपने औरतों के लिए मेल वो फीमेल डॉक्टर की डिमांड ना करें। भाई हम डिमांड नहीं कर रहे यार, हम तो कोशिश कर रहे हैं जितना हो सकता है हो जाए। कुफर का निजाम तो जब तब्दील होगा, इस्लाम के हाथ में वापस आएगा, बल्कि इस्लाम नहीं नेक मुसलमानों के हाथ में वापस आएगा, तब जाकर के फिर वो मामला ठीक होगा ना। ठीक है, हमने पूरी दुनिया का ठेका नहीं उठा रखा, हमारी बात भी कोई नहीं सुन रहा, इल्ला माशाल्लाह चंद लोग, गिनती के लोग होते हैं जो सुन रहे होते हैं बात। तो भाई औरतें तो डॉक्टर बन रही हैं, और मैं तो अपने भाई के जमाने की भी मिसाल दे चुका हूं कि जब मेरे भाई मेडिकल कॉलेज में एडमिशन के लिए जा रहे थे तो ये बड़ा शोर उठा था कि भाई लड़कियों को ज्यादा एडमिशन दे दिया जाता है क्योंकि उनके ग्रेड ज्यादा अच्छे आते हैं, और लड़कों को जो है वो ग्रेड्स कम होने की वजह से एडमिशन नहीं मिलता। तो भाई लड़कियों की तादाद तो वैसे ही बहुत ज्यादा है, नॉन मुस्लिम भी है, हत्ता के फतवा तो इस पर भी है कि नॉन मुस्लिम फीमेल औरत से जो है वो इलाज करवाया जा सकता है। हालांकि ट्रेडिशनली स्पीकिंग जब इस्लाम के हाथ में था ना ये हेल्थ केयर सिस्टम, जब इस्लाम सही मानों में मुसलमानों के हाथ में था जो कि इस्लाम को फॉलो किया करते थे, तो उस वक्त जो है फीमेल काफिरा को भी बदन दिखाने की इजाजत नहीं थी, नॉन मुस्लिम बिल्कुल भी औरत का बदन दिखाने की इजाजत नहीं थी, पता है ये बात, क्योंकि मेल डॉक्टर से इलाज होता था, और जो नर्सिस के तौर पे जो हेल्प आउट कर रही होती थी वो फिर कोई ऐसी चीज हो उसके अंदर वो असिस्ट कर रही होती थी। ठीक है, जैसे मरहम पट्टी वगैरह का काम वाला काम जो होता है। ठीक है, तो ये जो है ना कि जी हजरत जी जो है वो चूंकि उन्होंने कहा कि ये डॉक्टर थी, फिर भी इन्होंने जो है वो आलमा कोर्स कर लिया, इसको सीधे तरीके से पकड़े इस काम, इस ये ना कान को उल्टे उल्टे तरीके से घुमा करके हाथ से अगर कान को पकड़ेंगी तो बात समझ में नहीं आएगी। यहां पर प्रोमोट डॉक्टर बनने को नहीं किया जा रहा, बल्कि जो डॉक्टर बन चुकी है उसको दीन की तरफ आने के लिए प्रोमोट किया जा रहा है। क्योंकि आपको पता है अच्छी तरीके से कि इवन फीमेल डॉक्टर्स भी जो हैं वो भी अपने पेशेंट्स की हया और पर्दे का ख्याल नहीं करती, बल्कि मेल्स को जो है वो अंदर घुसाती हैं ऑपरेशन थिएटर के अंदर, अपने क्लिनिक के अंदर। तो तो अगर वो फीमेल डॉक्टर दीन की तरफ आ जाएगी तो शायद कम से कम अपने पेशेंट्स के जो है वो पर्दे का तो ख्याल कर लेना। तो फीमेल डॉक्टर्स के ऊपर मेहनत करें, जैसे हमारे हजरत जी रहमतुल्लाह किया करते थे, फीमेल डॉक्टर्स पे मेहनत किया करते थे कि वो दीन की तरफ आए, तो अपने पर्दे का भी ख्याल करें, दूसरे के पर्दे का भी ख्याल करें। इसलिए नहीं किया करते थे कि अपनी बेटियों को जो है वो तुम डॉक्टर बनाना शुरू कर दो, इसलिए नहीं किया करते थे। ठीक है, तो दोस्त मैसेजेस आए हुए आज इस पढ़ने पहले, मेरा ख्याल से एक डॉक्टर इंजीनियर लड़की की अपब्रिंगिंग भी कुरान सुन्नत के हिसाब से की जा सकती है अगर घर का माहौल कुरान सुन्नत फॉलो करे तो, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। आई थिंक यू आर वेरी वेरी रॉन्ग, और इसकी बहुत सारी डिटेल्स हैं जो कि अभी आपने शायद क्लासेस अच्छी तरीके से सुननी और लेनी नहीं शुरू करी है। ये बहुत तफसील के साथ हम इन चीजों के ऊपर बात कर चुके हैं, आगे इसका भी मौका नहीं है, आगे इंशाल्लाह आप सुनते रहें तो आपको समझ में आती रहेगी बात। बच्चों को असरी और दीनी तालीम कहाँ तक करवाएं? मजबूरी की हद तक करवाएं, और दीन को समझें असरी तालीम को भी समझें, कहाँ तक करवाएं, ये सारा का सारा कॉन्टेक्स्ट के ऊपर डिपेंड करता है आपके। ठीक है, हम अपने बच्चों को करवा रहे हैं, ठीक है, होम स्कूलिंग के जरिए से करवा रहे हैं और कुरान सुन्नत के माहौल को राइज करते हुए करवा रहे हैं, लेकिन इसमें बहुत ज्यादा डिटेल्स होती हैं, वो अभी सारी की सारी डिस्कस नहीं हो सकती, अभी तो एक टॉपिक के ऊपर बात हो रही है। ठीक है, लेकिन कंसिस्टेंटली हम हासिल करते रहेंगे, जुड़े रहेंगे, तो आपको सारी बातें इंशाल्लाह समझ में आ जाएंगी। ठीक है, तो ये डॉक्टर वाला जो मसला है ना, इसको जरा समझें, रिकॉर्डिंग इंशाल्लाह हुई होगी, रिकॉर्डिंग को दोबारा से सुने, एक बात नहीं समझ में आती है, ठीक है, तवज्जो से सुनना पड़ेगा। ये दीन की जो हकीकत है ना, दीन की, जैसे पहले भी कई दफा बात हो चुकी है, दीन की हकीकतों को समझने की कोशिश करें। दीन की हकीकत ये है, तू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ये दीन की हकीकत है, ये अल्लाह ताला ने हमारी जिम्मेदारी बनाई है। अल्लाह ताला ने पूरी दुनिया को हमारी जिम्मेदारी नहीं बनाया है, पूरी दुनिया ये अल्लाह ताला की जिम्मेदारी है, ये अल्लाह ताला की दुनिया है, ये अल्लाह ताला के लोग हैं, ये अल्लाह ताला के बंदे हैं। ठीक है, एंड अल्लाह ताला नोज व्हाट टू डू विद इट एंड हाउ टू डू व्हाट विद देम। ठीक है, हमें तो जो हमारी जिम्मेदारी बनाई है हमें उसको करना है ना। हम बैठ करके वो करने की कोशिश शुरू कर देते हैं कि जो हमारी जिम्मेदारी नहीं है बल्कि अल्लाह ताला का एरिया है, वो गोया कि हम खुदा बनने की कोशिश शुरू कर देते हैं। नहीं, आपका जो एरिया है आप उसकी जिम्मेदार हैं, आप उसकी फिक्र करें, और हर एक का एरिया अल्लाह ताला ने डिफरेंट बनाया है। एक औरत जो घर के अंदर होती है, उस औरत की उसका अपना घर और उसकी जो औलाद होती है वो उसकी जिम्मेदार है, लेकिन जो मर्द होता है उसकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है, उसकी जिम्मेदारी में उसकी बीवी और उसके बच्चे आ जाते हैं। जो खानदान का बड़ा होता है उसकी जिम्मेदारी इससे भी ज्यादा बड़ी हो जाती है। तो इस तरीके से हर एक की जिम्मेदारी डिफरेंट होती है ना, तो जो जिसकी जिम्मेदारी है वो उसकी फिक्र करे ना। आप मुल्क के प्रेसिडेंट तो नहीं है, तो आप पूरे मुल्क की फिक्र क्यों कर रहे हैं भाई? दुआ की हद तक फिक्र करें, अपने जानने वाले अपने करीब लोगों को जो है वो बात पहुंचाने की हद तक फिक्र करें। ये तो नहीं कि जी बैठे हुए सोच रहे हैं जी मुल्क का निजाम कैसे चलेगा, मुल्क का निजाम कैसे चलेगा। आप कौन होते हैं भाई मुल्क का निजाम चलाने वाले जो आप बैठ करके इस चीज की फिक्र कर रहे हैं? उसी तरीके से हर बंदे को फिक्र पड़ी है कि दुनिया में ये काम कैसे होगा, दुनिया में वो काम कैसे होगा। भाई अल्लाह नहीं है क्या करने के लिए? जैसे मिसाल के तौर पर हम तो बहुत सादा सी एक मिसाल देते हैं कि हम लंबी फ्लाइट्स में जब ट्रैवल किया करते थे या जब करना पड़ता है, तो भाई पीछे जहाज के पीछे जा करके जो है ना वो कोशिश करते कि खड़े होकर के नमाज पढ़ने की जगह मिल जाए। ठीक है ना, जहाज के पीछे थोड़ी बहुत इस तरह की जगह मिल जाती थी और बहुत तेजी के साथ फर्ज अदा कर लिया करते थे, बहुत तेजी के साथ, ताकि किसी को तकलीफ ना हो। तो अब जो है ना वो हमने किसी को जब ये बताया, अपने खानदान की कोई बुजुर्ग खातून थी, उनके सामने बात हुई कि जी हम तो पीछे जाकर के इस तरीके से नमाज पढ़ रहे थे। तो आगे से उनका जवाब क्या आया कि अगर हर बंदा इस तरह से जाकर के पीछे खड़े होकर के नमाज पढ़ेगा तो ये तो बहुत बड़ा केओस हो जाएगा जहाज के अंदर। अगर हर बंदा इस तरह से खड़े होकर के नमाज पढ़ना शुरू कर देगा तो जहाज का तो निजाम ही जो है वो केओटिक हो जाएगा, मसला हो जाएगा बहुत बड़ा। मैंने कहा यार मैंने पूरे पूरे जहाज का मैंने ठेका उठा रखा है कि मैं इस बारे में ये सोचूं कि अगर पूरा जहाज उठ करके नमाज पढ़ना शुरू हो गया तो ये काम कैसे चलेगा। भाई मेरे जिम्मे मेरी नमाज है यार, और पूरा जहाज कौन सा नमाज पढ़ रहा है, कोई तो नमाज पढ़ नहीं रहा होता, चंद एक लोग तो वैसे भी नमाज पढ़ रहे होते हैं। अब इस फिक्र में कि अगर सबने उठ करके नमाज पढ़नी शुरू कर दी तो जहाज का निजाम कैसे चलेगा, मैं अपनी भी नमाज ना पढ़ूं, क्या ख्याल है, मैं अपनी भी नमाज ना पढ़ूं पीछे खड़े होकर के, जबकि जबकि मैं पढ़ सकता था, मेरे पास ये अपॉर्चुनिटी थी, एयर होस्टेस मुझे मना नहीं कर रही थी, कोई ऐसा मसला खड़ा नहीं हो रहा था। अगर होता खड़ा तो फिर मैं बैठ के नमाज पढ़ लेता यार, अगर कोई मसला खड़ा होता तो मैं बैठ के नमाज पढ़ लेता, लेकिन जब मसला कोई खड़ा नहीं हो रहा तो मैं पीछे खड़े होकर नमाज क्यों ना पढ़ूं, इस फिक्र की वजह से कि जहाज का निजाम कैसे चलेगा। तो पहली बात तो यह है कि मैंने पूरे जहाज का ठेका तो नहीं उठा रखा, और दूसरी बात जो इससे भी ज्यादा अहम है वो आप बताएंगी, दूसरी बात जो इससे भी ज्यादा है, मैं पहली बात तो ये ना कि मैंने जहाज का तो ठेका नहीं उठा रखा, मैं तो अपनी फिक्र करूं ना कि जब मेरे पास अपॉर्चुनिटी है खड़े होकर के नमाज पढ़ने की तो मैं अपनी नमाज पढ़ू खड़े होकर के, और अगर कोई मसला होगा तो मैं बैठ के नमाज पढ़ लूंगा। बात समझ में आ रही है, ठीक है ना, इस तरह से मैं सोच रहा हूं, पूरे जहाज के बारे में मैं नहीं सोच रहा। हाँ उनको अल्लाह ताला तौफीक अता फरमा दे, मेरे दिल से दुआ निकल रही है कि अल्लाह सबको नमाज की तौफीक अता फरमा दे, ठीक है, किसी को बोल भी पाऊंगा तो मैं उनको बोल भी दूंगा कि भाई आप भी जरा नमाज पढ़ लें, ठीक है, लेकिन इससे ज्यादा तो मैं नहीं कर सकता ना, ठीक है। थोड़ा सा पिक्चर करने की कोशिश करें इस वाले सिनारियो को कि मेरे जिम्मे जो है वो पूरा जहाज का निजाम नहीं है, ठीक है, ये एक रुख है इस बात को समझाने का, और दूसरा रुख क्या है इस बात को समझाने का, दूसरा रुख आप सोचें जरा क्या होगा इसका। असल में मुझे लोगों की नहीं अल्लाह की रजा को फर्ज देखना, ये लोगों की रजा वजा की मैं बात नहीं कर रहा, हम यहाँ पे निजाम की बात कर रहे, निजाम की बात कर रहे, तो निजाम का दूसरा जवाब क्या होगा इसका। इसका दूसरा जवाब ये होगा जो कि अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया भी था, एग्जैक्टली, इफ वी स्टार्ट टू ओबे अल्लाहस कमांड देन अल्लाह विल फिक्स द निजाम। अभी पीछे कहा था ना कि भाई ये जो दुनिया है ये मेरी दुनिया तो नहीं है, ये बंदे जो हैं ये मेरे बंदे तो नहीं है, ये तो अल्लाह की दुनिया है, ये अल्लाह के बंदे हैं, ठीक है, तो जब अल्लाह ताला चाहेंगे तो क्या वो निजाम नहीं बदल सकते। तो छोटी सी एक मिसाल दी है ना एयरप्लेन की, ठीक है, कि हमें ये फिक्र पड़ी हुई है कि एयरप्लेन का निजाम कैसे चलेगा अगर सब ने उठ के नमाज पढ़नी शुरू कर दी। हम ये क्यों नहीं सोचते कि भाई जब सब उठ करके नमाज पढ़ेंगे तो अल्लाह ताला एयरलाइंस वालों के दिल में ये डालेंगे कि नमाज की जगह बनाओ, एयरप्लेन में नमाज की जगह बनाओ, तो एयरलाइन वाले एयरप्लेन में नमाज की जगह बना देंगे, जैसे सऊदी एयरलाइंस के अंदर नमाज की जगह होती है अभी भी बहुत सारे जहाजों में है, और पहले तो सब जहाजों में होती थी। क्या ट्रैवल कभी सऊदी एयरलाइंस के अंदर, तो जहाज में नमाज की जगह अथॉरिटीज ने बनाई ना, क्यों बनाई, अल्लाह ने उनके दिल में डाली कि भाई हमारे जो ट्रैवलर्स हैं ये नमाज पढ़ने वाले लोग हैं तो इनके लिए हमें नमाज की जगह बनानी पड़ेगी, उन्होंने नमाज की जगह बनाई। अब ठीक है उस जगह में सारे लोग एक साथ नहीं आ सकते, लेकिन दस दस करके तो सारे लोग पढ़ लेते हैं ना, हत्ता कि इवन खवातीन भी जो है वहां पे जाकर के पढ़ लेती हैं, इतना तो टाइम होता है कि खवातीन के लिए भी टाइम निकल आता है। तो ये निजाम बन गया ना, कैसे बन गया, अल्लाह ने बना दिया ना, जब लोगों ने नमाज पढ़नी शुरू करी तो अल्लाह ने निजाम बना दिया।
या बनवा दिया। उसी तरीके से जब हम अपने दीन की फिक्र करेंगे और अपने अहलो आयाल के दीन की फिक्र करेंगे, तो क्या अल्लाह ताला ने काम नहीं करना अपना कि अल्लाह ताला निजाम भी अता फरमाएंगे? तो ये निजाम अल्लाह की जिम्मेदारी है, ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है। अल्लाह ताला जब चाहते हैं, जैसे चाहते हैं, अल्लाह ताला निजाम बनवा देते हैं। हमारा काम, हमारा दीन है, हम अल्लाह ताला के हुक्मों के बारे में कितनी परवाह करते हैं, राइट? अल्लाह ताला के दी हुए नेमतों का हम कितना हक अदा करते हैं, कितना शुक्र अदा करते हैं, ये हमारी जिम्मेदारी है। कोई माई का ला करके इससे इख्तलाफ कर सकता है, कोई मुफ्ती ले आए, कोई शेख ले आए, कोई पीर ले आए, कोई फकीर ले आए, वो इस बात से इख्तलाफ कर सकता है कि अल्लाह ताला हमसे किन की नेमतों का हिसाब लेंगे। मेरी नेमतों का मुझसे हिसाब लेंगे कि मेरे पड़ोसी की नेमतों का मुझसे हिसाब लेंगे? जो मुझ पर नेमतें अल्लाह ने दी हैं तो उनका मुझसे हिसाब लेंगे ना, तो मुझे उनकी फिक्र करनी चाहिए कि मुझे पड़ोसी की नेमत की फिक्र करनी चाहिए, राइट? कि पड़ोसी कैसे अदा करेगा अपनी नेमतों का हक, तो चलो मैं भी करना छोड़ देता हूं, ठीक है? तो उसी तरीके से अपनी औलाद के ईमान की फिक्र करनी है कि पूरी दुनिया के अंदर कैसे निजाम चलेगा, मेडिकल साइंस का और अस्पताल का निजाम कैसे चलेगा। भाई वो अल्लाह चला रहा है यार, वो जैसे भी चला रहा है। अब ये मुसलमान इस काबिल ही नहीं हुए कि वो काफिरों से लेकर के मुसलमानों के हवाले करे, तो काफिरों के जरिए से चलवा रहा है। तो भाई हम अपने दीन का तो फिक्र करें ना, अपनी औलाद के दीन की तो फिक्र करें ना, अपनी औलाद को तो उन जगहों पे हम धक्के ना दें कि जहां पे उनका दीन भी बर्बाद हो और उनकी दुनिया भी बर्बाद हो। रातों की जो है वो नाइट ड्यूटी कर रही होंगी और मर्दों के मुंह में घुस के कोई काम कर रहा होगा, और कोई मर्दों की जो है वो दूसरी जगहों पे घुस के काम कर रहा होगा, कर रही होगी, जो हैं वो कर रही हैं, उनको करने दो यार, उनके साथ दावत तबलीग का काम कर लो ज्यादा से ज्यादा। ना ये कि अपने लोगों को जो है वो उठा करके वहां पे फेंकना शुरू कर दोगे, नहीं, कैसे चलेगा निजाम, कैसे चलेगा निजाम, कैसे चलेगा निजाम, चलो जी मैं भी अपनी बेटी को डॉक्टर बनाऊं, चलो जी मैं भी जो है वो सब मुसलमान औरतों को डॉक्टर बनाऊं। ये हमारे दीन में नहीं सिखाता, ठीक है? बाकी जो आप लोगों ने सवाल पूछे थे ना कि कितना पढ़ाना चाहिए, वो कितना, ये इसके अंदर वेरी कॉन्टेक्स्ट रिलेटेड रिलेटेड, ठीक है? तो वो उसके हिसाब से फिर दीन का निजाम एक और भी है, ये जो है ना, जैसे अपनी नेमतों का हिसाब लिया जाएगा, अपनी फिक्र करना, अपने घर अहलो आयाल की जो है वो दीन की फिक्र करना, उसी तरीके से हमारे दीन का एक और भी अहम तरीन उसूल है, वो ये है कि फसअलू अहल जिक्र इन कुंतुम ला तालमून, कि इल्म वालों से पूछो जिस चीज का तुम्हें इल्म ना हो। तो हर चीज क्लास के अंदर नहीं हो सकती, बिकॉज क्लास में जनरल बात होती है, उसूली बातें होती हैं, स्पेसिफिक्स ये क्लास में डिस्कस नहीं हो सकते। उसके लिए इस्लाही ताल्लुक, ये हमारे दीन का निजाम है। अभी हम पढ़ेंगे इसको, वक्त टाइम मैनेजमेंट के बयान में हम आगे पढ़ेंगे इंशाल्लाह इसको। नबी अलैहिस्सलाम की जो जनरल बातें होती थी ना, ये बहुत मुख्तसर होती थी, जिसको बयान कहते हैं, ये बहुत मुख्तसर होते थे। क्यों मुख्तसर होते थे? इसलिए कि सहाबा कराम के साथ नबी अलैहिस्सलाम का इंडिविजुअल ताल्लुक था, पर्सनल ताल्लुक था। तो नबी अलैहिस्सलाम की सारी तालीमात पर्सनल लेवल के ऊपर होती थी, बहुत थोड़ी सी तालीमात बयान की शक्ल में होती थी, खिताब की शक्ल में होती थी। तो ये जो पर्सनलाइज्ड तालीम हासिल करना, इल्म हासिल करना, तरबियत हासिल करना जो है ना, ये हमारे दीन के बुनियादी सुतूनों में से एक सुतून, बिकॉज दिस इज इट, इसके बगैर काम चल ही नहीं सकता, इसके बगैर काम चल ही नहीं सकता। शैतान के साथ भी पर्सनल ताल्लुक होता है कि नहीं होता? قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس। ये जो खन्नास शैतान होता है, ये हर एक के साथ इसका हर एक का अपना पर्सनल खन्नास होता है, उसके दिलों के अंदर जो है ना वसवसे डाल रहा होता है, उल्टी सीधी बातें डाल रहा होता है। तो इधर तो पर्सनल ताल्लुक है हर बंदे का शैतान के साथ, और इधर जो है ना वो पर्सनल ताल्लुक नहीं बनाना जी, इधर जो है ना यहाँ तो बस हमने यूट्यूब के ऊपर बयान सुनना है जी बस, या हमने जो है ना वो बस यानी जो एक अमूमी किस्म की डिस्कशन होती है ना बस हमने वो सुन लेनी है, सेमिनार सुन लेने हैं हमने, पर्सनल जो है वो मशवरा नहीं करना, अपने हालात के मुताबिक जो है वो गाइडेंस नहीं हासिल करनी, तो फिर क्या होगा? जाहिर है उधर आपका पर्सनल ताल्लुक है, इधर कोई पर्सनल ताल्लुक नहीं है, तो फिर उधर ही की बात मान करके इंसान चलेगा ना, क्योंकि वहां से गाइडेंस मिल रही है, बल्कि मिस गाइडेंस मिल रही है वहां से मुस्तकिल। इसी वजह से जो गाइडेंस की बातें भी सुन रहे होते हैं ना सेमिनार्स के अंदर, बयानात के अंदर, उनको भी वो जो पर्सनल मिसगाइड होता है ना, पर्सनल मिसगाइड, वो उनको इंटरप्रेट करके उनको समझा रहा होता है भी, ये तो ये ऐसे है, ये ऐसे नहीं है, वैसे है, क्योंकि वो ये जो पर्सनल गाइड तो वही है आपका शैतान, तो वो पर्सनल मिसगाइड ही कर रहा होता है, फिर उसके बाद पर्सनल गाइड तो नहीं कर रहा होता। ठीक है, तो चले आज तो खुतबा हमने जो है वो इस बारे में बयान का पढ़ लिया था, लेकिन बात ही चीज इंशाल्लाह अगली क्लास के अंदर भी शुरू करेंगे, कम से कम इतना हम कह सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह इत्मीनान हो गया, जो तो पीछे वाला टॉपिक था तो उससे जो एक अहम तरीन बात निकलती थी वो भी अल्लाह का शुक्र है हम मुकम्मल कर ली। अब जो है वो टाइम मैनेजमेंट पढ़ना इंशाल्लाह से हम शुरू कर लेंगे अल्लाह ताला, बस असल बात तो ये है ना कि जी बात समझ में आ जाए और उस पर अमल की तौफीक मिल जाए, सिर्फ इंफॉर्मेशन गैदरिंग जो है ना कि बस जल्दी से आगे पढ़ो, इंफॉर्मेशन और गैदर हो जाए मेरे पास और आगे पढ़ो जी, फैक्ट्स एंड फिगर्स और ज्यादा मेरे पास आ जाए, ये तो हुज्जत बनेंगे, ये इंफॉर्मेशन गैदरिंग, ये फैक्ट्स एंड फिगर्स तो हमारे खिलाफ हुज्जत बनेंगे। असल चीज क्या है कि हमें बात समझ में आए और हम उसके ऊपर अमल करने वाले बन जाएं, या कम से कम अमल की कोशिश करने वाले बन जाएं, इसके ऊपर हमारी निजात होनी है। ठीक है, बताना सबको बात की समझ अमल की तौर पर, फरमाए वाखर अल्हम्दुलिल्लाह बिलालमीन, अस्सलाम वालेकुम।